सागर सुधी जो विद्याति सागर सुधी गुरु है तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
जय बोले का परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की
हम सब लोग एक विचार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिसमें हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रकार से जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है वैसा ही विचार किया है। शास्त्र की विधि से जो भी ज्ञान जो भी आचरण किया जाता है वही श्रेष्ठ माना जाता है और विधि के बिना जो भी प्रक्रिया की जाती है वो हमें लाभ नहीं देती है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया कोई हमने अपने मन से नहीं विचार की है, जैसी आचार्य भगवंतों ने हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया दी है उसे ही हमने एक साथ बैठ करके और विचार करना शुरू किया है। कितने दिन हो गए ऐसा दिन गिनने से तो काम नहीं चलेगा, पूरे जीवन भर भी यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार करते रहें तो भी कम है। कोई व्यक्ति जीवन को अच्छा बनाने का विचार करता है और विचार करते ही साथ जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते और कम से कम आज इस काल में तो वैसे भी धर्म के क्षेत्र तक आना मुश्किल है, बहुत पुण्य चाहिए, पाप की प्रबलता हमें धर्म से दूर ही रखे रहती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो पाप ही नहीं किए इसलिए हमको मंदिर जाने की धर्म करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने इतने पुण्य कहां किए हैं जो आपको धर्म करने की सुध जागे। हमारा इतना पुण्य है कि हमको धर्म करने की थोड़ी सी सत्संग करने की थोड़ी सी भावना मन में उठती है, लेकिन सत्संग करने अकेले मात्र से सानिध्य पालने अकेले मात्र से कोई अपने जीवन को अच्छा बना ले ऐसा जरूरी नहीं है। फिर जो कुछ भी हम विचार करते हैं उसको ग्रहण करना, उसको धारण करना और धारण करके उसका पालन करना, अपने जीवन में उसका आचरण करना, ये सब दुर्लभताएं हैं। इसलिए कभी भी इस प्रक्रिया को करते करते मन में ऊब आ जावे या कि थकने लगे मन कि क्या वही बात अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात, रोज रोज उसी प्रक्रिया को क्या दोहराना। तो जब जब ऐसा मन में आ जाए तो जरूर ये विचार करना कि संसार में दोहराई तो रहे हैं, वही सुबह से उठना, वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही दुकान पर बैठना और वही आकर के चुपचाप फिर सो जाना, इसके अलावा कर क्या रहे हैं। वही सब चीजें दोहरा रहे हैं, वही दाल रोटी कल खाई थी वही आज खाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आज कल ऐसे खाई थी तो आज ऐसे घुमा के खाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कैसे भी खाएंगे यही खाना पड़ेगी, आज कान में खाने से काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह इन चीजों को भी हम निरंतरता दें। हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है कि हम संसार की बातों को जितनी निरंतरता देते हैं उतनी निरंतरता हम धर्म की बातों को, धर्म के विचारों को निरंतरता नहीं देते हैं। उनका सातत्य नहीं होने की वजह से उनका इंप्रेशन हमारे भीतर नहीं पड़ता। कभी अवसर अगर इस दौरान आया तो हम इस पर भी एक अलग से ही बात करेंगे कि क्या है मायने इन सब चीज़ों के दोहराने का, कैसे हमारे भीतर किसी चीज़ के दोहराने से गहरा इम्पैक्ट पड़ता चला जाता है। वही तो अनुप्रेक्षा है, उस पर अपन कभी फिर विचार करेंगे। पर ये जो एक विचार की प्रक्रिया जिसमें हम सिर्फ अभी विचार कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा में तो विचार के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी रोज करके देखेंगे, वो बिल्कुल बाद की चीज़ है। पर इस विचार की प्रक्रिया में धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होती चली जा रही है कि हाँ सचमुच मुझे अब अपने जीवन को अच्छा बना ही लेना है। हमारे ज्ञान में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती जा रही कि अरे हम तो ऐसा जानते नहीं थे, हम तो ऐसा कर लेते थे, ऐसा हम सोचते थे ठीक कर रहे हैं, अब मालूम पड़ गया ऐसा करना ठीक नहीं है। उसके किए बिना भी मेरा जब काम चलता है तो व्यर्थ पाप काहे को लादो, इस तरह अगर हमारे मन में मानसिकता बनने लगी है तो मैं सोचता हूँ हो गया काम। ऐसा नहीं है कि इधर मैंने कहा कि रात्रि भोजन छोड़ दो और उधर आप पहुँचे और आपने छोड़ दिया रात्रि भोजन। इतना आसानी से जो छोड़ देते हैं वे तीर्थंकर ही हो सकते हैं, हम और आप नहीं हैं। और अगर इतना आसानी से छोड़ देते हैं तो कल के दिन खाने भी लगेंगे अगर इतनी आसानी से छोड़ा है तो। बिना विचार के कोई भी क्रिया शुरू कर दी जाती है वो आसानी से छूट जाती, देर नहीं लगती, जरा सा धक्का लगता है छूट जाती। इसलिए हम निरंतर विचार कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या करना, हो गया बता तो दिया सब और स्टॉप इट, खत्म करो इन सब चीज़ों को, क्या करना आपने को? रोज रोज नहीं, स्वाध्याय की निरंतरता हमारे जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगी। लिखा हुआ है धवला जी में कि जो आलस छोड़ करके निरंतर 24 घंटे ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो आगामी जीवन में केवल ज्ञान का हकदार होगा। उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी आगामी जीवन में जो आलस छोड़ करके, वरना तो यहाँ पाप के अलावा और कुछ नहीं है, राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। किसी के साथ भी बैठ जाओ सिवाय राग द्वेष की चर्चा के दूसरी नहीं हो सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम और आप अगर बैठें तो कभी कोई किसी के साथ बैठ के ये नहीं कहता कि अच्छा सात तत्व का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है, गुरुओं का क्या स्वरूप है, ऐसी चर्चा नहीं करेगा। उनका क्या हुआ, वो उधर मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा हो गया, बस इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है, देख लीजिएगा। फिर भी अपन और निरंतर बैठ करके एक साथ बैठ करके और विचार कर रहे हैं, इससे हमें अपने जीवन में श्रद्धा में दृढ़ता आए, ज्ञान हमारा परिष्कृत हो, आचरण में भी तब्दीली आए बिना नहीं रहे, धीरे धीरे आएगी। जब हमारे अंतरंग में कोई चीज बैठ जाती है तो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। एक गृहस्थ के जीवन में परिवर्तन कैसे कैसे आता है, स्लोली एकदम धीरे धीरे, वो हम देख रहे हैं कि क्रमशः आचार्यों ने हमें कैसे एक 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 पाप से बचा करके और धर्म में लगाने की प्रक्रिया दी है। और यहाँ तक कि अगर हम गृहस्थ हो गए हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत इतना अपराध नहीं हो गया है, हाँ गृहस्थ रहते रहते ही और मुनि बनने की भावना नहीं भाई, तो फिर वो गृहस्थी कोई काम की नहीं। इतना जरूर कहते हैं आचार्य भगवंत। इसलिए गृहस्थी में भी मैं साधु बनूं, साधु क्या बनूं, मैं तो भगवान का साक्षात्कार करूं, और उसका उपाय ही ये है कि मैं साधु बन के ही साक्षात्कार कर सकता हूं, अपने उस आत्म तत्व को का अवलोकन कर सकता हूं, उस अपने आत्मा की अनुभूति तभी कर सकता हूं जब मेरे जीवन में साधुता क्रमशः बढ़ती चली जाएगी। और उस साधुता को बढ़ाने के लिए एक गृहस्थ के जीवन में भी साधुता आ सकती है, ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी कि देखो इतना छोड़ दोगे तो तुम साधु के जैसे ही तो हो गए, और देखो इतनी अपनी मर्यादा निश्चित कर लोगे तब तो तुम थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल वैसे ही हो गए। तो एक जगह खुद ही प्रश्न उठाते हैं कि क्या वो महाव्रती हो गया जिस गृहस्थ को आपने सामायिक करने के लिए कहा, और कहते हैं कि प्रत्याख्यान तनुत्वा मंदतरा चरण मोह परिणाम सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। आप एक साधु को, आप एक गृहस्थ को महाव्रती कैसे कह रहे हैं, एक घंटे के लिए भी कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं हम हमारी विवक्षा समझो, हमने किसी को साधु कह दिया है तो अंतरंग में अभी उसके हो सकता है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कषाय हो, साधुता तो संजुलन कषाय अकेले के शेष रहने पे आती है। हम करणानि योग की पद्धति नहीं लगा रहे हैं, हम तो चरणानि योग की पद्धति से कह रहे हैं कि एक घंटे के लिए चूंकि उसने सारे पापों को छोड़ दिया है इसलिए देखो वो बिल्कुल महाव्रती के समान हो। ऐसे ऐसे पीठ थप थपा करके और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है आचार्य भगवंत। ऐसी प्रक्रिया थप थपा रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे 100 गलतियां हो गई, वो जो एक तुमने अच्छी करी उसके लिए तो पीठ थप थपा दें, उन 100 गलतियों का तुम जानो, वो तो निरंतर तुम कर ही रहे हो, वो जो उन 100 के बीच भी तुमने एक अच्छाई की है उसके लिए क्या है भैया। ऐसे करके धीरे धीरे हमारी अच्छाइयां बढ़ेंगी। हमने पिछले दिनों कितनी सारी चीजें, हमने पापों से बचने का प्रयास कर लिया, वे पाप हमारी मर्यादा अधिक होने की वजह से ज्यादा होते हैं तो अपने अपनी मर्यादा सीमित कर ली, गुण व्रत ले लिया, अनर्थ दंड ले लिया, भोगोपभोग समझ लिया कि भैया इन सब में ऐसी मर्यादा करी जा सकती है, सामायिक करते समय तो हम शांति से सारे पापों से बच सकते हैं। और दिन भर अगर पाप से बचना चाहें तो महीने भर में 4 दिन तो तय कर ही लो, अष्टमी चतुर्दशी के 2 अष्टमियां 2 चतुर्दशी, जिसमें पूरे दिन उपवास या एक आसन करके स्वयं धर्मामृत का पान करेंगे और दूसरे को भी धर्मामृत का पान कराएंगे और शांतिपूर्वक अपना दिन व्यतीत करेंगे। फिर कहते हैं कि थोड़ी सी सेवा भी आवश्यक है, दान पूजा शील उपवासो चहु विहानम साव्यानम धम्मो। दान पूजा शील और उपवास, यही तो 4 अगर संक्षेप में पूछे जाएं तो शावक के धर्म हैं। और फिर और भी ज्यादा पढ़ें तो कहते दानम पूजा खत्म, दान और पूजा इसी से कल्याण हो जाएगा शावक का। 2 ही धर्म बताए हैं, दान से निर्लोभपना, क्योंकि परिग्रह संचित किया है और सारे पाप की जड़ वही है तो दान दोगे तो उससे बच जाओगे, और पूजा दिन भर में बहुत सारे संचित हो जाते हैं पापों के फल स्वरूप खोटे कर्म, उन खोटे कर्मों को काटने का एक ही उपाय है जिनेंद्र भगवान के सम्मुख और जाकर के उनकी ठाट बाट से पूजन करना। पूजन में भी हम दान ही कर रहे हैं अगर देखा जावे तो, विसर्जन कर रहे हैं अपने जो जो चीजों का संग्रह करके रखा था, उन श्रेष्ठ द्रव्य का जिसको कि छोड़ने का मन नहीं होता, ऐसी श्रेष्ठ द्रव्य भी भगवान के सामने जाके चढ़ा देते हैं, उसमें भी दान छिपा हुआ है। और साथ साथ हम अपने गुणों का स्मरण करते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण अंततः अपने ही गुणों का स्मरण है। इस तरह से इसलिए आचार्य भगवंतों ने, विशेष रूप से समंत भद्र स्वामी ने, पूजा दान और बैया वृत्ति तीनों को एक ही रखा है। दानम बैया वृत्तम तपोधनाय गुण निधि धर्माय। कितनी कंडीशन लगा दी है इसमें, मैं देख रहा था कि दान देना बैया वृत्ति है और बैया वृत्ति काय के लिए करना, धर्माय, और किसी पर्पस से नहीं। और किसकी करना तपोधनाए, जो तपोधन है और कैसे हैं गुण निधिये, जिनके पास रत्नत्रय रूपी गुण है, ऐसे तपस्वी जनों की को देना दान, वही तुम्हारी भैया वृत्ति कहलाएगी। और अनपेक्ष तोपचार, और कोई अपेक्षा नहीं रखना कि इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा, ये मेरा कुछ कर देंगे, मुझे मंत्र तंत्र दे देंगे, मेरे दुकान में इजाफा हो जाएगा दान देने से। इस तरह के किसी प्रति उपकार की आज ये बहुत चल पड़ा है, उसे ही हम धर्म मानते हैं, आज तो उसकी ही पूजा करते हैं जिससे कुछ रिटर्न मिलता है, गिव एंड टेक, ये अर्थ दृष्टि है ये। इसलिए डोनेशन और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। अनपेक्षता अर्थ वृत्ति, वही दान श्रेष्ठ है जिसमें कि प्रति उपकार की कोई भावना नहीं है। हमने तो दिया, बस देने का सुख पा लिया, लेकिन देने के बाद मुझे क्या मिलेगा इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लिखा है, परोपकाराय दवंति गावा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय फलंती वृक्षाः, परोपकाराय सताम विभूति। ऐसा लिखा हुआ है, कभी नदी ये नहीं मांगती है कि तुम रिटर्न में मुझे क्या दोगे, पानी ले रहे। कभी वृक्ष ये नहीं कहता कि कितने फल लिए, हिसाब लिख के जाओ, उतने चुकाना। नहीं, जितने लेना फल, जितने जब तक है तब तक लेते चले जाओ, और पूरे खत्म हो जाएंगे तो अगली ऋतु में फिर आएंगे, कोई बात नहीं। और दूध देती है गाय, निरंतर देती रहती है खाना पीना, कहां से कहीं से भी अपना जुटा लेती है। आप नहीं भी घास डालो तब भी कहीं ना कहीं से अपना, वो कभी आपके घास आज आपने डालने से इनकार कर दिया इसलिए दूध देने से इनकार कर दे, ऐसा कभी नहीं किया। वो परोपकार ही जानती और कुछ नहीं जानती। इसीलिए इसी तरह हमें भी जो है बिना किसी अपेक्षा के और उपकार करने की, दान देने की भावना हो, तभी वो दान श्रेष्ठ है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में बहुत फर्क है। डोनेशन में जरा भी भावना नहीं है कि कुछ मिले, इन्वेस्टमेंट में 50 रुपया लगाए, 50 को सामान ले लो, 1000 रुपया दो, अच्छो बढ़िया पटिया लगवा लो अपने नाम को, संगमरमर को, ये इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन थोड़ी है ये। आप क्या सोच रहे हैं कि डोनेशन है? जितने पटिया लगे हैं जहां जहां, उन सब ने इन्वेस्ट किया है, उसके द्वारा उन्होंने उधर अपना एक पटिया सुरक्षित कर लिया है। हमने तो एक जगह देखी कि एक एक सीढ़ी पर नाम डला, एक सीढ़ी का पटिया दिया उनने, उस पटिया पे ही पूरे में लिखवा लो अपना, वो पटिया ही दो तो उनने 250 रुपया को, उतना ही लगा भी सीढ़ियों पे, वही पे उनको नाम लिखो। देखना आप, आश्चर्य है ये, कहना चाहिए इसको। हम शिखर जी में देख करके आए, एक खंबा बना था, उस खंबे में 8 फलक थे, उन 8 फलक का अलग अलग जो ग्रेनाइट दिया गया है वो अलग अलग लोगों ने दिया, तो उस पे हर एक पे नाम लिखे, इतने इतने से पीस पे नाम लिखे। ये डोनेशन नहीं भैया, ये तो पहले ही नंबर आपने संक्लेश करके दिया है। संक्लेश है ये कि मेरा नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाने पर अहंकार, नहीं लिखा जाने पर संक्लेश। इसलिए डोनेशन और इन्वेस्टमेंट में बहुत अंतर है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन तो अपनी राशि देकर के कुछ रिटर्न में, पहले ही से बैक रिटर्न वापस आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो दान की प्रक्रिया, इस तरह के दान की प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने श्रावक के लिए कही, उसी को भैया वृत्ति कहते हैं, उसी को पूजा कहते हैं, और कोई विशेष बात नहीं है। अब जरा समझ लें कि दान कितने प्रकार का होता है और किस तरह से दिया जाता है। वो कह रहे हैं विभवेन, विभवेन के मायने कह रहे हैं आचार्य समन्वत्र स्वामी की, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषा अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, और विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। दूसरे के अनुग्रह के लिए देना अपना धन, ये कहलाएगा दान। ऐसा नहीं कि दूसरे की जो चीज उठाई वो दूसरे को दे दे, वो नहीं कहलाएगा। अपनी चीज देना और अनुग्रह की दृष्टि से देना जिससे अनुग्रह हो, नहीं तो जो उनके दांत नहीं है वो को तुम चना दे रहे, जो उनके भोजनों की तो खुद की हिम्मत नहीं है वो कह रहे हाथी ले लो, वो कहां से पाले हाथी, 1000 रुपया दिन को खर्चा है हाथी को, हम तो हाथी डोनेट कर रहे हैं उसको, नहीं। दान ऐसा जो कि दूसरे का अनुग्रह कर सके, और कहते हैं कि स्वयं का अनुग्रह तो होता ही है क्योंकि स्वयं देने से पुण्य का अर्जन होता है, दान देते ही साथ, दान की भावना करते ही साथ अनुग्रहार्थम, अपने और दूसरे के अनुग्रह के लिए, अपना अनुग्रह तो स्वतः होता है, दूसरे के अनुग्रह की भावना होनी चाहिए। और स्वस्याति सर्गो, अपनी चीज का त्याग कर देना यही दान है, लेकिन उसकी विधि होना चाहिए, और जो द्रव्य दिया जा रहा है वो योग होना चाहिए, दाता देने वाला 7 गुणों से युक्त होना चाहिए, और पात्र भी उत्तम मध्यम जघन्य इस तरह से सदपात्र होना चाहिए। अपात्र और कुपात्र को दान देने की चर्चा नहीं आई। पहले एक चीज और समझ ले मैं अपन, कि दान भी 2 प्रकार का है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। वो जो गीता में तामसिक राजसिक और सात्विक दान की चर्चा की, उसमें से सात्विक और राजसिक दान वो सब जो है पारलौकिक दान में भी इतने भेद किए हैं, वो बिल्कुल अलग चर्चा है, वो फिर करूंगा आपसे। पर पहले लौकिक और पारलौकिक दान अपन समझ लें। लौकिक दान में है दया दत्ति, करुणा दान, इसमें पात्र अपात्र के विवेक की आवश्यकता नहीं है, करुणा आ गई दे दिया। गरीब आदमी दिखाई पड़ा, रुपए मांगता है, लेट, क्या करोगे, जो करना वो करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या करोगे तुम जानो, नाली में डालो चाहे कुछ करो उसका, हाँ हम उसका विचार नहीं करेंगे, ये लौकिक दान है, इससे कोई परमार्थ का संबंध नहीं, करुणा आई इसलिए हमने दे दिया, इस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। करते हैं लोग ज्यादा विचार, अरे क्या पता वो हमारे उस पैसे का क्या करेगा, तो कभी अपने बेटे के बारे में सोचा कि सारी संपत्ति उसको दे जा रहे, मिटाएगा कि बनाएगा, पहले ही से पता है कि सर आप तो पहले खून पी रहे हो, तब तो कुछ नहीं हाथ रुकता आपका, शराब पीने वाले बेटे को और व्यसन करने वाले बेटे को तो पूरी संपत्ति अपनी सौंप देते हैं, तब कुछ विचार नहीं करते कि मेरी संपत्ति का क्या होगा। और एक गरीब आदमी को अगर 2 पैसे देते हैं तो बड़ा विचार करते हैं, उसकी 7 पीढ़ी पूछना चाहते हैं कि कैसे हुआ, कहते नहीं इसकी आवश्यकता नहीं। जिनेंद्र वर्णी ने लिखा है कि मुझे मालूम है कि 100 लोगों में से एक ही पात्र है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन सा पात्र है, इसलिए मैं तो 100 को ही दे दूंगा, हो सकता है कि 99 खाली चला जाए पर उस एक को तो मिल जाएगा, सो मेरा दान सार्थक हो जाए। नरेंद्र बचपन का नाम था विवेकानंद के, विश्वनाथ उनके पिता का नाम था। विश्वनाथ के दरवाजे पर रोज एक आदमी आना शुरू होता है और वो उसको भोजन करता है, ये मैं सुना चुका हूं शायद, हैं? हाँ नहीं सुना है, सुना दिया, नहीं तो आप उस दूसरी चीज सुनाओ, हैं? नहीं सुना, ओके रे नहीं सुना, अरे शायद प्रश्नोत्तर में सुनाया हो। वो कुछ ना कुछ मांगने आने लगा और विश्वनाथ जो है जो नरेंद्र के पिता थे वो रोज उनको उसको भोजन कराने लगे, और नरेंद्र को एक दिन मालूम पड़ा कि ये तो शराबी आदमी है, शराब पीता है, तो पिता को जो है उन्होंने और हाथ पकड़ लिया कि ये सदाव्रत नहीं खुला है, ये धर्मशाला नहीं है कि आप इसमें चाहे जो जिस चाहे को बांटते रहो, जरा पात्र पात्र का विवेक तो कर लेना चाहिए। तो पिता कुछ नहीं बोले, सिर्फ यही कहा कि पता नहीं किस मजबूरी में शराब पीता होगा, पर मेरे दरवाजे पे अतिथि की तरह आया है, इसलिए अतिथि देवो भव, मेरे लिए तो अतिथि है, मैं तो उसे दूंगा, शायद उसी के वेश में भगवान आए हों तो क्या कहा जा सकता। ऐसा कह के वो और देते रहे। एक दिन देखा कि वो बैठक में बैठा है वही आदमी, तो नरेंद्र को तो एकदम आग बबूला हो गए कि कल तक बाहर बैठता था और इतनी उसको लिफ्ट मिल गई कि भीतर आकर के बैठ गया, चरणों में बैठा है, क्या कह रहा है देखें सुने क्या कह रहा है। तो दरवाजे के पीछे बैठ के सुन रहे थे, वो क्या कह रहा था, कि सिर्फ इस दुनिया में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। सबने मुझे दुत्कार के भगा दिया, मैं तो भूखा मर ही जाता। मैं शराब पीता हूँ, मैं सब खराब आदतें करता हूँ, लेकिन आपने जानते हुए भी मुझे प्यार दिया है। अब आपने मुझ पे विश्वास किया है, इसलिए मैं अपने जीवन को आप जैसा कहेंगे वैसा बनाऊंगा। आप कहें तो मैं आज ही छोड़ देता, और मैंने तो छोड़ ही दी, समझ लो आपके चरणों में। मैं कहना मुझे ये है, ये तो वात्सल्य का जब अपन चर्चा करते हैं तो वात्सल्य से दूसरे को बदल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें यह भी तो है कि जो हम दान देते हैं उसमें हमें लौकिक दान में तो कोई ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। दे दिया और अपना करुणावश, अपने परिणाम तो हमारे अच्छे थे, वो उसका क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एक होती है, दूसरे नंबर की होती समदत्ति, अपने समान आचार विचार वाले व्यक्ति को अपनी कन्या दे देना अपनी धन संपत्ति के एक हिस्से के साथ, इसे कहते हैं समदत्ति। जैन आगम में यह सब बातें भी लिखी हैं महापुराण में, ये ध्यान रखिए, इनको हम भूलते चले जाए। विवाह की प्रक्रिया पूरी लिखी हुई है, और विवाह के बाद संतान उत्पत्ति की 53 क्रियाएं होती, वो सब भी लिखी हैं। अपन पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों को, इसलिए आज आने वाली पीढ़ी कोई संदेश हमसे नहीं ले पाती है, जैसा है वैसा चलता रहता है। ये चीज़ें दान के अंतर्गत श्रावक को सिखाई जाती हैं कि समदत्ती, अपने समान आचार विचार वाले को, ताकि कोई डिस्प्यूट ना खड़े हो, ताकि बात को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, गाड़ी अच्छे से चलती जाए, ऐसा ना हो कि गाड़ी के दो पहिए अलग अलग दिशा में चलें तो क्या होगा, टूट फूट होगी। इसी तरह से अपने समान आचार विचार वाले को, आज तो आचार विचार का तो कोई हिसाब ही नहीं है, किसका क्या आचार विचार होगा कुछ तो कहा ही नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल हो गई। अपने संपत्ति का एक हिस्सा और अपनी कन्या को देना, ये समदत्ति कहलाती है। सकल दत्ती, अपने योग पुत्र को अपनी धर्म परंपरा और कुल की परंपरा सौंपना, ये सकल दत्ती कहलाती, ये भी दान है। अपने योग पुत्र को अपनी कुल परंपरा और अपनी धर्म की परंपरा दोनों सौंपना, चाबी भी और शास्त्र भी, एक हाथ में चाबी, इससे खुलेगा ताला संसार का, और ये है एक ठो किताब, इससे खुलेगा दरवाजा परमार्थ का, दोनों सौंप करके मुक्त हो गए। ये है सकल दत्ती। यह दान भूल ही गए हम, कहां देते हैं। बल्कि बेटा धीरे से पिता को घर से बाहर निकाल के पूरी संपत्ति का मालिक बन जाता है। इसके पहले कि वो मालिक बने, उसके पहले पिता का फर्ज है कि वो बेटे को अपनी जिम्मेदारी सौंप देवे कि कुल की परंपरा हमने यहां तक लाए, हम हमारी इतनी रिश्तेदारी है, इतने व्यवहार है हमारो, जो सब तुम्हें सौंपो तुम आगे बढ़ाना इसको, दो और तुम नए व्यवहारी जोड़ सको, दो और नए रिश्तेदार बना सको तो बनाना, नहीं तो जितते हैं उनसे निभाउत रहियो, बुलाउत रहियो, जाउत रहियो, आउत रहियो उनके घर, बनी रह जा अपनी कुल की परंपरा। ये भी है उसमें शामिल, लौकिक दान में शामिल है, बताइए आप। और धर्म, धर्म की एक ठो पुस्तक भी उसके साथ में देने की परंपरा खत्म ही हो गई है। आज हम अपने हाथ से अपने पैसे से एक पुस्तक भी नहीं खरीद के अपने बेटे को देते हैं कि ये लो, कभी खरीदवा के दी किसी ने हाथ तो उठाओ, कपड़े खरीदवा के दिए होंगे और दुनिया भर की चीजें खरीदने पैसे दिए होंगे, लेकिन अपने हाथ से खरीद करके कि ये धर्म की पुस्तक है बेटे, ये तुम्हारे लिए देता हूं, इससे जो है तुम अपने जीवन में सीखना। एक पिता हैं अभी भी मिले मुझे, मैं फिर नाम लेऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि दूसरे का सम्मान करने से अपने अपमान होने की भावना व्यक्त हो जाती, इसलिए अपन यही समझ ले एक व्यक्ति है। और उन्होंने मालूम अपने विदेश जाने वाले बेटे को क्या कहा कि बेटे वहां जाकर के मुझे मालूम है कि तुम 1,00,000 रुपए एक महीने में कमाने जा रहे हो, लेकिन ये नहीं भूल जाना कि हमारे अपने संस्कृति त्याग की संस्कृति है, भोग की संस्कृति नहीं। जिस देश में जा रहे हो वहां भोग की संस्कृति है, जिस देश से जा रहे हो वहां त्याग की संस्कृति है, इसलिए जीवन का सुख तो त्याग में ही है, भोग में नहीं है। अपार संपदा के बीच भी अगर त्याग की भावना बनी रहे तो बनाए रखना, यही मेरा तुम्हारे लिए विदेश भेजते हुए आशीर्वाद है। बताइए ऐसा हम कहां कर पा रहे। ये सकल दत्ती कहलाती है, अपनी कुल की परंपरा भी दी और साथ में धर्म का उपदेश भी, धर्म की परंपरा भी। ये हो गया लौकिक दान का क्षेत्र, खत्म होगी लौकिक दान की बात। पारलौकिक दान की चर्चा करते हैं। वो पारलौकिक दान जो है वह भी मैंने आपसे कहा कि राजसिक, तामसिक और सात्विक हो सकता है। उसमें भी पात्र का विचार करना पड़ेगा कि पात्र कैसा है, उत्तम, मध्यम, जघन्य है, और सुपात्र के भेद हैं ये। और पात्र भी तीन तरह के हैं, कुपात्र है, अपात्र है और सुपात्र है, और सुपात्र में भी तीन भेद हैं। फिर उसकी विधि है, उसका द्रव्य है, उसके दाता के गुण हैं। इन सब पे खूब विचार करके फिर जो है इस दान की प्रक्रिया को सबसे पहले राजा श्रेयांश ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान आदिनाथ को दान देकर के दान तीर्थ की परंपरा शुरू की थी। युग के आदि में आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान, वहां से ये श्रेयांश राजा से ये दान तीर्थ चला है। इस दान की प्रक्रिया में हमें विचार करना चाहिए कि दान हमें कैसे देना, किसे देना, कब देना और कितना देना। इन सब बातों पर द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, अपने यहां तो हर बात को इसी तरह से चर्चा की जाती है। अब इस पर विचार एक एक करके मैं सोच रहा हूं कि समय तो पूरा हो गया और मैं अगर इसमें से किसी भी चीज को विस्तारता हूं तो 10 मिनट तो 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसलिए अपन ने एक संक्षेप में ये बात समझ ली कि इन सब चीजों पर हमें विचार करना है दान के बारे में, और दान सबसे श्रेष्ठ कौन सा है जो कि हम विवेक पूर्वक देते हैं, जिसमें कि हम प्रति उपकार की भावना नहीं रखते हैं, सिर्फ हम अपने उपकार के, दूसरे के उपकार की भावना से दान देते हैं, तभी हमारे पास भी रहता है दो ही हाथ दुलीजिए यही सयानों काम। श्रावक तो संचय करना ही जानता है, उस संचय के बीच में भी वो अपने संचित धन का कैसे सदुपयोग कर सकता है, इसके लिए आचार्य भगवंतों ने ये कहा है। लेकिन आत्मानुशासन में पहले कह दिया है कि सावधान रहना। कई लोग कहते हैं कि चूंकि हम दान देना चाहते हैं इसलिए पाप पूर्वक कमाएंगे, उनके लिए इशारा कर दिया है कि कृपा करके दान ना दें मगर पाप पूर्वक ना कमाएं। नहीं तो एक हिम्मत सिंह कोठारी, अल कबीर के मैनेजिंग डायरेक्टर, अल कबीर नाम का कतल खाना है हैदराबाद के अंदर, जब उनसे ये कहा गया कि आप इतने समझदार होकर के और इस तरह धर्मात्मा होकर के और ऐसा काम कर रहे हैं, तो बोलते मैं धर्म का ही काम कर रहा हूं, मैं इस स्लॉटर हाउस से, मैं इस कतल खाने से जो आय होगी उसका 75% मुनि जनों, त्यागी व्रती जनों, धर्मायतनों के लिए खर्च करूंगा। इसलिए आत्मानुशासन में लिख दिया कि जब भी नदियों में पानी आता है अधिक वर्षा काल में तो गंदा ही आता है, वो तो शरद काल की नदी का पानी है जो कि स्वच्छ निर्मल बहता है। इसी तरह गंदे तरीके से कमाया गया ढेर सारा धन, धन और दान में देना, वह दान श्रेष्ठ नहीं है। भले ही आप एक पैसा क्यों ना दें, अपनी गाड़ी कमाई और चोखी कमाई का दें, तब भी वो दान आपका श्रेष्ठ है। इसलिए पहले सावधानी रखने की आवश्यकता है कि दान की चर्चा सुन करके और तुरंत मन में आएगा कि हम भी दान देंगे क्योंकि दान देने वाले को बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए मैं भी कैसे करूं, तो बेईमानी करके, कमा करके, और फिर ये तो ऐसा हो गया कि मेरे पास बहुत पानी है तो मैं पहले कीचड़ लगा लूं फिर धोऊंगा। हाँ, कहते इससे अच्छा कीचड़ ही मत लगाओ इसलिए धोने ही नहीं पड़े, दान देकर के मैं अपने उस पाप को धो लूंगा, इसलिए दान देने के लिए पहले पाप करूं। पहले मैं कीचड़ छपाऊं फिर बाद में मैं धो लूंगा, ऐसा नहीं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। एक नदी और तालाब के बीच में कहा सुनी हो गई थी, बहुत बहुत समझाया उस तालाब ने नदी को कि ऐसे में मिट जाएगी, तू गैर समझदार है, जितना आता है सब बहाती चली जाती, उस समुद्र को देती चली जाती है, तेरे पास रहेगा क्या? देख मेरे इधर देख, क्या लहरा रहा हूं मैं, इस तरह से हैं? वो घटना याद आ गई, वो ही सुना के बात पूरी करता हूं, फिर चर्चा करूंगा। तो बहुत समझाया उसको, लेकिन नदी कहां समझने वाली, वो तो मुस्कुरा करके आगे बहती चली जाती थी। ढेर जितना पानी आता था सब बह करके और समुद्र में मिलता चला जाता था, वो तालाब में सब इकट्ठा होता चला जाता था। और आए अब बरसात के बाद ठंड के दिन, पतली हो गई धारा नदी की, फिर धीरे से तालाब ने कहा कि देखा सूखी जाती है अब, आने तो ते गर्मी, तेरी ये पतली सी धारा भी गई समझ लो। अपनी तरफ नहीं देख रहा वो, संचित करने वाला अपनी तरफ नहीं देखता, देने वाला क्यों देख रहा है? वो अपन कहते ना कि को देवे और इनको पेट फिरा रहा हूं, वो बिल्कुल वैसे ही स्थिति है। अपने पास संचित करना भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन गलत तरीके से संचित करके और देना भी श्रेष्ठ नहीं। दोनों ही चीजें समझने की हैं इस घटना में। अतिरिक्त संचय भी ठीक नहीं है, गलत तरीके से संचय करके और फिर देना भी ठीक नहीं है। वो कहते कि दो नंबर से कमाया एक नंबर का बना रहे दान देकर, ये तरीका ठीक नहीं है, ये बहुत चल पड़ा है। हाँ, क्योंकि इसमें दान का नजरिया नहीं है, इसमें तो प्रति उपकार अकेला है, इसलिए सावधानी के लिए कह रहा हूं। वो तालाब इकट्ठा करता चला जाता था और धीरे धीरे करके जब धूप पड़ने लगी तो सारा पानी एवोपरेट होने लगा और तालाब में क्या बचा, सिर्फ कीचड़ कीचड़ बचा, दलदल हो गई और सूखने की कगार पे आ गया। नदी की धारा पतली थी लेकिन स्वच्छ थी, कोई चाहे तो उसमें आसानी से पानी पी सकता था। गर्मी भीषण पड़ने पर भी उस नदी ने बाहर से बहना स्थगित कर दिया, लेकिन जरा सा खोदो तो अंतः शलीला, इसलिए नदी को एक दूसरा नाम दिया अंतः शलीला, भीतर भीतर जो निरंतर बहती रहती है लेकिन देना नहीं छोड़ती, निरंतर देती रहती जो उसके पास है और स्वच्छ बनी रहती है। आखिरी में यही होता है कि तालाब बिल्कुल सूख जाता है, नदी में फिर भी पानी रहता, तब तालाब अपने आप ही कहता है कि ठीक बात है, मैं भी तुम्हारे जैसा अगर निरंतर देता रहता तो शायद ना आज मलिन होता और ना आज ऐसी नौबत आती, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, तुमने इतना सब कुछ दिया फिर भी तुम्हारे पास शेष रह गया है। भैया बस यही मैसेज इसमें भी है, अपने जीवन में भी इसी तरह से है। जीवन अच्छा और गंदा कैसे बनता है? गंदा बनता है संचित करने से। हम प्रक्रिया चला रहे हैं अच्छा बनाने की, तो जो हम संचित करें ईमानदारी से उसे भी देते चले जाएं। कई बार ऐसा लगता है कि ईमानदारी से तो संचित हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से संचित उनके होता है जिनकी आवश्यकताएं कम होती, ईमानदार आदमी की आवश्यकताएं भी कम होती, संचित भी खूब होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बेईमानी करके ही संचित होता हो ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर अपना पुण्य है तो वास्तव में देखा जाए तो उसी के द्वारा होता है, और नया नया पुण्य देते चले जाने से आता भी चला जाता है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनमें कि गांधी जी के जीवन की तो है ही कि एक पैसे दान देने वाले को श्रेष्ठ कह दिया था वो करोड़ों का, क्यों? आपने तो अपने करोड़ रुपए में से और 1 लाख भी दान दे दिया है तो 1% ही तो दान दिया है, लेकिन जिसने 1 रुपया कमाया और सारा का सारा दे दिया उसने तो पूरा ही दान दिया है। इसलिए अब हम जब पारलौकिक दान की चर्चा शुरू कर रहे हैं तो हमें मन बना लेना चाहिए कि दान के समय हमारा ध्यान रहे अपनी योग्यता का विचार कर ले कि मैंने बेईमानी से कमा के मुझे दान नहीं देना है, जो भी देना ईमानदारी से कमा करके मुझे दान दे वही श्रेष्ठ है। ये बात जुदी है कि बेईमानी से कमाए हुए को भी विषय भोग में लगाने से तो बेटर है कि सही जगह लगाया जाए, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ ये भी मैं कह रहा हूं, हाँ साथ में देखिए, लेकिन आप मेरी बात को बहुत गौर से, टेप हो रही, 3-4 बार बाद में भी सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं फिर, क्योंकि बहुत विचार करने के बाद कह रहा हूं। अगर हमने जो कुछ भी बेईमानी से भी कमा लिया है तो उससे क्या करें, नाली में तो फेंकेंगे नहीं। विषय कषाय में फेंकना और भोग उपभोग में लगाना और शराब पी लेना, ये भी एक बेईमानी है, बेईमानी से और बड़ी बेईमानी है। उसे हम ठीक ढंग से उपयोग कर ले, में कम से कम अपनी अज्ञानतावश हमने ऐसा किया है, जानबूझ के नहीं कि मुझे दान देना है। नहीं तो हम में और डाकू में ज्यादा अंतर नहीं है कि बड़े लोगों को लूट लिया और गरीबों को दे दो, इसको भी मैं ठीक नहीं मानता, ये ध्यान रखना। हमने तो गरीबों को देवे के लाने, बड़े लोगों को लूटो है, ऐसी भावना क्यों? मैं भावना की बात कर रहा हूं कि ऐसी भावना से नहीं, मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है कि मुझे बेईमानी करना पड़ रही है, ऐसी कमजोरी मान करके जो मेरे पास संचित हो गया, वो संचित का क्या करूं, सदुपयोग कर लूं कम से कम। मैंने अज्ञानतावश, मैंने अपने कमजोरी वश ऐसा किया है, नहीं इसको ठीक मान के कर रहा हूं ऐसा नहीं, ये कह रहा हूं मैं आपसे, फिर से गौर करिएगा इस चीज को। तो इस तरह से पारलौकिक दान के लिए तो हमें सबसे श्रेष्ठ है कि जो हम ईमानदारी से कमाते हैं उसी से पारलौकिक दान हो सकता है, और उसके बिना तो हम चाहे उत्तम पात्र को भी दें, चाहे कहीं भी लगा देवें, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। इस पर अपन फिर चर्चा करेंगे। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हम सफल होंगे, ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिन्ह करते हो,
करते तब शैल नदी तट पर तरुतल बरसाती झरियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादा नहीं क्या कोई हो, जग को देती जग की
दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अभिनश्वर मणिया, शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु पर प्रणाम, मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पर भास वेखो, मानु शिव कानी है अनुभव बता। पाए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो बाबे और आनी है वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोदो हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गये सो पावे सुख जैन नवल मंगल गाने रवा
श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में ओम निक परम पूज्य स्वामी श्री सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंग पद प्राप्त है अर्गम निर्वाण की स्वाहा।